ಕಾರ್ತನ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾಮ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾವ್ರತಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಹಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸದೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಗಣಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಿತಾ ಶ್ರೀಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ್ ರಾಧಾ ಕಾಂತ್ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚಿಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೇ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಆಜ್ ಸೇ ಏಕ ನಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಹೋ ರಹಾ ಹೈ सातवां स्कंध का ग्यारहवां अध्याय। हम अभी सातवां स्कंध का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि प्रहलाद महाराज की महत्ता और किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भक्ति किया, उनके गुणों के बारे में श्रवण किया। श्रवण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, ये आज जो हमने बोटी पर लिखा हुआ है ये दूसरा श्लोक है, ये पहला श्लोक का तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा पहला श्लोक को विचार करते हैं, दूसरा श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। सुखदेव सुख उवाच पहला श्लोक है, सुखदे हितं साधु सभा सभाजितानं महत्तमा मान्या कुरु करमात्मनः युधिष्ठिरो दैतपते महान्विता गोस्वामी। अभी ये युधिष्ठिर नारद मुनि का संवाद ये नरसिंह देव के बारे में समाप्त करके आगे परीक्षित महाराज को कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्रुत्वा श्रुत्वे हितम साधु सभा सभाहितम, श्रुत्वे सुनने के बाद, कौन सुन रहे, युधिष्ठिर महाराज सुनने के बाद ये इतिहास जो भी प्रहलाद महाराज के प्रसंग में सुनने के बाद साधु सभा सभाजितम, ये जो प्रसंग है अभी तक जो चर्चा किया गया है प्रहलाद महाराज के जो प्रसंग, ये क्या है, साधु सभा सभाजितम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये जो प्रसंग अभी आपने सुना या युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि में जो चर्चा हुआ प्रहलाद महाराज की गुणावली, ये केवल युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में ही चर्चा नहीं है, ये शिव ब्रह्मा अनेकों देवी देवता लोग वो सब लोग ये प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो चर्चा करते हैं। इसके विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि जिस साधु सभा में प्रहलाद और ध्रुव का चर्चा नहीं होता है वो साधु सभा माना नहीं जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा ध्रुव प्रहलाद का जो चरित्र है उसको श्रवण करने में बहुत आनंद ग्रहण करते थे। तो इससे पता लगता है कि जहाँ भी आध्यात्मिक प्रसंग होता है, भागवत होता है, वो निश्चित रूप में ध्रुव और प्रहलाद का कहीं ना कहीं प्रसंग का चर्चा होना चाहिए। तो ये बात इससे स्पष्ट होता है, साधु सभा सभाजितम, ये जो शब्द है सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि ये जो चर्चा है प्रहलाद महाराज का, जो भक्ति का जो चर्चा है नरसिंहदेव का प्राकटीकरण के शुरू का वध प्रहलाद महाराज की भक्ति का जो प्रसंग है, ये साधु सभा सभाजितम, ये जहाँ भी साधु सभा है उधर निश्चित रूप में उनका चर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ था चर्चा समाप्त हो गया, नहीं, ये बार बार अनेकों जगह हो रहा था और हो रहा है और होगा ही। और आगे इसके विषय में चर्चा किए साधु सुभाष भाजपम महत्तम अंग अभी महत्तम अंग ये अभी ये प्रसंग को किसने सुना युधिष्ठिर महाराज महत्तम अग्रण्य अग्रण्य महत्तम महत्तम में अग्रगण्य ये सूचित किया जा रहा है ये शब्द के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हैं। युधिष्ठिर महाराज कौन है महत्तम अग्रण्य अग्रगण्य मतलब अग्र मतलब पहला महत्तम ये सूचित किया जा रहा है पांडवों में सबसे आगे अग्रगण्य कौन है सबसे पहले कौन है युधिष्ठिर महाराज है। युधिष्ठिर महाराज कोई और नहीं है साक्षात धर्मराज है। धर्मराज का अर्थ है यमराज यमराज के ही अवतार है यमराज अंशा अवतार माने जाते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो महात्मों में यानी हम जानते हैं कि महाजनेतास गंथा एक महाजन कौन है ये यमराज महाजन उन्हीं यमराज युधिष्ठिर महाराज के रूप में प्रकट हुए इसलिए महात्मों में अग्रगण्य है और पांडव भी साधारण लोग नहीं उनमें से सबसे पहला स्थान युधिष्ठिर महाराज आया है। अभी युधिष्ठिर महाराज गुरु क्रम आत्मनः प्रहलाद महाराज के प्रसंग में उन्होंने सुना प्रहलाद महाराज को कैसे संबोधित करते सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं गुरु क्रम आत्मनः। इधर ये जो शब्द है आत्मनः ये एक मन को सूचित करता है यानी जिसका मन हमेशा उरुक्रम उरुक्रम भगवान कृष्ण का एक और एक नाम है यानी कृष्ण में जिनका मन हमेशा लगा हुआ है उसको उरुक्रम आत्मना कहा गया है यानी प्रहलाद महाराज का मन हमेशा कृष्ण की चरणकणों में स्थित रहता है इसलिए हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज को स्मरण के आचार्य है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण के आचार्य प्रहलाद महाराज इसलिए उनको संबोधित किया गया है कि उरुक्रम आत्मना। अभी युधिष्ठिर महाराज जो महत्तम महान भक्तों में अग्रगण्य है वो प्रहलाद महाराज जो उरुक्रमात्मनः उनके बारे में श्रवण करके वो आगे युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं दैत्यपते मूढ़ मुदान्वितः प्रपच्युत आगे और पूछने लगे किनसे नारद मुनि से पूछने लगे कैसे पूछने लगे मुदान्वितः बहुत प्लीजिंग वे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मुदान्वितः मुदा का अर्थ है प्रसन्न चित्त होके भक्ति के कार्य जो किया जाता है वह प्रसन्न चित्त होके किया जाता है ऐसा फोर्सफुली नहीं किया जाता है बहुत जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है और इसको बहुत प्रसन्न होते हुए प्रश्न पूछना चाहिए प्रसन्न चित्त होते हुए उनका जवाब भी श्रवण करना चाहिए और बताना चाहिए। जब तक ये प्रसन्न चित्त नहीं रहता है चित्त प्रसन्न नहीं रहता है ये भक्ति जो है वो अच्छी तरीके से किया नहीं जा सकता इसमें प्रसन्न चित्त होना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजविद्या राजगुरु पवित्र प्रत्यक्षावनुभवम सुसुतम ये सुसुतम अर्थ के ऊपर इसका वर्णन करते हैं सुसुप्तम का अर्थ यही नहीं कि बल्कि सुलभ है सहज है इसका अर्थ ये भी है कि प्रसन्न चित्त होना संतुष्ट होके कहना संतुष्ट और प्रसन्न चित्त हुए बिना भक्ति के कार्य जो है वो बराबर हम कहीं नहीं कर सकते इसलिए जो श्रोता है और वक्ता है वो दोनों प्रसन्न चित्त होना चाहिए उनके मन में अगर कोई चिंता है तो वो श्रवण कीर्तन बराबर नहीं हो सकता है। चिंता रहित होते हुए कोई द्वेष भावना रहित होते हुए कोई मन मोटाव की भावना को त्याग करते हुए श्रवण कीर्तन होना चाहिए ये श्रवण कीर्तन का प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। मन से सारे प्रकार की जितने भी प्रकार के जो कलमश है उसको दूर रखना चाहिए प्रसन्नता हृदय में होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार पूछे मुदान्विता मुदा और प्रसन्न चित्त होते हुए इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया या भूयः भूयः तनयम् स्वयं वह भूयः मतलब वापस उन्हें प्रश्न पूछा पहले भी उन्होंने प्रश्न पूछा था प्रहलाद महाराज प्रसंग में भूयः करके वापस उन्होंने प्रश्न पूछा प्रसन्न चित्त होते हुए किनको पूछा नारद मुनि को पूछा नारद मुनि का वर्णन हुआ है स्वयं भवः तनयः, तनयम् स्वयं भवः। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयं भवः, क्योंकि स्वयंभू के पुत्र है स्वयंभू, या ब्रह्मा जी जो है स्वयं अपने आप से जन्म लिए, उनका कोई ऐसे भौतिक पिता का नहीं है, भगवान स्वयं उनके पिता है। तो कमल के पुष्प के अंदर तो प्रकट हुए, तो इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है स्वयं भवः, और उनके पुत्र कौन है नारद जी हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को गुणगान करते हैं, नारद मुनि का भी गुणगान करते हैं, प्रहलाद महाराज का गुणगान करते हैं। किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने की तरीका का भी गुणगान करते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ने किया। अभी सुखदेव गोस्वामी तो स्वयं भावों के वक्ता है, उनको ये सब तो करने की जरूरत नहीं, उनको बुला सकते हैं। आज युधिष्ठिर ने नारद से पूछा, अस्तित्व है भागवत और वैष्णव कल्चर होता है कि आप कोई भी भक्त को दर्शन करते हो, इनके बारे में अगर कहना चाहते हैं, उन्होंने इस प्रकार ऐसा किया करके बोलना चाहते हैं, तो उनका कुछ विशेषताओं के द्वारा संबोधित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को आपको बुलाना है या किसी को किसी के बारे में कुछ कहना है, तो सबसे पहला उनका नाम पुकारने से पहले उनके विशेषता के साथ उनका नाम को उच्चारण करना चाहिए। अच्छा वो इतना अच्छा भक्त है, वो अच्छा जगाते हैं, ऐसा भक्त है और जो अरे इस प्रकार वो सुंदर भक्ति करते हैं, सुंदर जपा करते हैं, ऐसा भक्त है। तो उनकी भक्ति की विशिष्टता के द्वारा एक भक्त का पहचान होता है। तो कभी भी किसी का भी पुकारा जाता है, किसी के बारे में बताया जाता है, निश्चित रूप में उनके जो एडजेक्टिव्स होना चाहिए, अंग्रेजी उसको एडजेक्टिव्स कहा जाता है, नहीं तो हिंदी ग्रामर में उसको विशेषता कहा जाता है, विशिष्टता, स्पेशलिटी, वो स्पेशलिटी के द्वारा उनको संबोधित करना चाहिए। ये सिस्टम है, कल्चर है। जैसे पुराने जमाने में या कोई काम है, समझ लीजिए कि कोई घर में आते हैं तो वो सारे डायरेक्टली काम के बारे में बात नहीं करते, वो थोड़ा इधर उधर की बातें करेंगे, वो इधर उधर की बातें नहीं है, ये जो प्रसंग है उसको थोड़ा सा इन दोनों की वजह संबंध है और अच्छी तरह से गाढ़ बनाने के लिए, बहुत दृढ़ बनाने के लिए कुछ ऐसी बातों को जो मन को भरने वाली बातें हैं, जो मन को शांत करने वाली बातें हैं, उन बातों को कहा जाता है। और मन को प्रसन्न करने वाली बातें क्या हैं, वो है किसी के बारे में हमेशा अच्छा बात करना। आप मान लीजिए किसी के बारे में आप बुरा बात करेंगे तो ना कहने वाला का मन प्रसन्न रहेगा, ना सुनने वाले का मन प्रसन्न रहेगा। खास करके भक्तों के समाज में ना बोलने वाला का जो मन प्रसन्न रहेगा किसी की बुरा करने से, ना सुनने वाला का मन प्रसन्न रहेगा भक्तों के समाज में। भौतिकवादियों के समाज में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन भक्तों के समाज में जरा सा भी थोड़ा सा भी भक्ति है किसी के अंदर, तो निश्चित रूप में किसी वाले बुरा नहीं सुनना चाहता है। तो इसलिए जब तक ये भक्तों का गुणगान करते हुए भक्तों का एक प्रकार उनकी विशेषताओं को वर्णन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मुदा मुदा का अर्थ है प्रसन्न चित्त नहीं होगा, और प्रसन्न चित्त नहीं होगा तो क्या होगा, आगे चर्चा बराबर हो नहीं सकता। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, कैसे प्रश्न पूछा, मुदा प्रसन्न होकर उन्होंने प्रश्न पूछा, भूयः वापस उन्होंने प्रश्न पूछा, किसको पूछा, स्वयं को वह तनयम, स्वयं को वह तनयम यानी ब्रह्मा जी के पुत्र को उन्होंने प्रश्न पूछा। आज इसका प्रश्न का चर्चा है। युधिष्ठिर उवाच, तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, भगवान श्रोतुम इच्छामि, भगवान भगवान करके संबोधित किया नारद मुनि को। वैसे तो भगवान तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, नारद मुनि को भगवान करके संबोधित किया जा रहा है। ऐसे पहला स्कंद में भी अनेकों जगह नारद मुनि को और अन्य लोगों को भी शिव जी को भी भगवान करके संबोधित किया गया है। क्यों ये भगवान शब्द कभी कभी भक्तों को क्यों लगता है, क्योंकि नारद मुनि कोई और नहीं, वो भगवान के शिव की आवेश अवतार है। हम सब जानते हैं नारद मुनि भगवान के भक्ति शक्ति का आवेश अवतार है। वैसे अनेकों प्रकार के अवतार है, छह प्रकार के अवतारों का वर्णन करते हैं ऋषि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बात को। ये छह प्रकार के अवतारों में एक प्रकार का अवतार क्या है, शक्ति आवेश अवतार है। ये जो शक्ति आवेश अवतार अनेकों प्रकार के, दो प्रकार का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उनमें से जो गौण शक्ति आवेश अवतार के अंतर्गत नारद मुनि आते हैं, भक्ति शक्ति का प्रचार का जो पति शक्ति जो है भगवान ने नारद मुनि के अंदर निहित किया, और जो पप्पू पालन शक्ति है पितु महाराज के अंदर, और संहार दुष्ट संहार शक्ति है पुरुषोत्तम के अंदर, वैसे अनेक प्रकार की जो भगवान की शक्तियों को भगवान ने एक विशेष जीव के अंदर आवेश करते हैं, उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। अभी इधर नारद मुनि को भगवान के किसलिए संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि वो भक्ति शक्ति के आवेश अवतार है। अगर किसी के अंदर एक महान गुण प्राप्त होता है, वो गुण इसलिए है क्योंकि भगवान के द्वारा उनको प्राप्त है, इसलिए उनको नारद मुनि को भगवान करके संबोधित करने में कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए इधर भगवान श्रोतुमिच्छामि का क्या है, मैं इच्छा करता हूँ। किसका इच्छा करता हूँ, सुनने का इच्छा करता हूँ, इच्छामि श्रोतुम। तो हमेशा भागवत में इन प्रसंगों में बार बार उनका स्मरण हो रहा है, आपको हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जो श्रोता है वो अपना इच्छा व्यक्त करता है वक्ता के प्रति, मैं और सुनना चाहता हूँ और खास करके इसके विषय में सुनना चाहता हूँ। भागवतम का शुरुआत ही कौन से अध्याय से हुआ है, पहला सूत्र का पहला अध्याय है नैमिषारण्य के ऋषियों का छह प्रश्न। ये छह प्रश्न के अंतर्गत नैमिषारण्य के ऋषि कई इच्छा व्यक्त करते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। तो क्या सुनना चाहते हैं वो भी वो प्रश्न पूछे। तो ऐसा नहीं कि केवल हम सुनना चाहते हैं, नहीं, क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताएंगे तो वक्ता को ऐसा लगता है कि ये तो बस टाइम पास करने के लिए बैठे, बस सब कुछ सुनाइए, ऐसा नहीं करना, सुनाइए, क्या सुनाए वो भी बताना चाहिए। तो दैट टॉक्स बी आस्क, स्पेसिफिक थिंग शुड बी आस्क। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रोतुमिच्छामि किसके बारे में सुनना चाहते हैं, निनाम धर्मम सनातनम। सबसे पहला मैं सुनना चाहता हूँ कि निनाम साधारण लोगों का धर्मम सनातनम, यानी सनातन धर्म के बारे में सुनना चाहता हूँ सबसे पहला। दूसरा वर्णाश्रमाचार्युतम, उसके साथ में ये वर्णाश्रम धर्म कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी सुनना चाहता हूँ। यत्त्वमाम विन्दते परम, यत्त्वराम जिसके द्वारा विन्दते परम, विन्दते का क्या है कि वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, परम प्राप्त कर सकते हैं, परम सर्वोच्च चीज को प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, सर्वोच्च इष्ट सिद्धि जो हमारे जीवन के लिए है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछते हैं। ये जो प्रश्न है सुनने के लिए बहुत सरल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा तत्व है, गहरा सिद्धांत है, ये जानना चाहिए। ऐसा लगता है अरे युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा नारद मुनि से, ये पूछा सनातन धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, उन्होंने यही पूछा। लेकिन इन तीनों के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है, और इसको क्यों पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात जानना चाहिए सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। दूसरी बात है वर्णाश्रम धर्म का वर्णन भी शास्त्र में हुआ है, तो ये वर्णाश्रम धर्म क्या सनातन है, वर्णाश्रम धर्म सनातन नहीं, तो अभी ये सनातन धर्म क्या है और ये वर्णाश्रम धर्म क्या है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है वो जानना चाहिए। ये प्रश्न है किसका, युधिष्ठिर महाराज का। तो ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये दोनों कैसे संबंधित थे, क्या वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके सनातन धर्म को पालन कर सकते हैं, या वर्णाश्रम धर्म के बिना सनातन धर्म को पालन किया जा सकता है। तो अगर नहीं किया जा सकता है तो वर्णाश्रम धर्म तो भौतिक है, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे होगा, ये सब उनका प्रश्न है, उनके मन में ये सब प्रश्न है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला है सनातन धर्म। प्रभुपाद जी अपनी टीका में इस व्याख्या में सनातन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म के बारे में बहुत बार हमने कहा है, इसके ऊपर बहुत विचार किया है कि सनातन धर्म का अगर एक लाइन में चर्चा किया जाए वो क्या है, वो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो सर्व कृष्णा एटर्नल, इज एटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये सनातन धर्म जीव का स्वभाव है कृष्ण का सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। तो ये आत्मा का धर्म क्या है? वो सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म का दूसरा व्याख्या आचार्यगण कहते हैं कि वो धर्म जिसके द्वारा हम सनातन स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी शाश्वत गति को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ये सनातन धर्म का दो अर्थ है, लेकिन दोनों का अल्टीमेट अर्थ एक ही है, ध्यान में रखिएगा। एक है सनातन धर्म, सनातन हमारे अंदर सब वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा का धर्म क्या है? कृष्ण का सेवा करना। दूसरा, सनातन धर्म का दूसरा अर्थ ये है कि वो धर्म जिसके द्वारा हम सनातन तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है? वो भी भगवान की सेवा है। अंततः दोनों एक ही है, लेकिन दो प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी सनातन धर्म को कार्ट दिया जाता है, सीधा दिया जाता है, सनातन मतलब आत्मा, आत्मा का धर्म। दूसरा क्या है? सनातन धर्म का वो धर्म जिसके द्वारा हम सनातन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेस, वो प्रोसेस है, खाली उसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य, इस श्लोक के अनुवाद में श्री गोपाल लिखते हैं कि सनातन तत्व है कॉमन एंड एटर्नल। तो वो धर्म जो सबके लिए, सारे जीवों के लिए एकमात्र है, एक चीज है, और जो सनातन है हमेशा के लिए, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो ये जीव स्वरूप क्रिश्चियन रचिदास, इसके बारे में हम सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट। तब प्रश्न आता है, अगर जीवे स्वरूप और क्रिश्चियन कृष्ण का सेवा करना है, ये वर्णाश्रम धर्म कहाँ से आ गया? जिसके दृष्टि मार्ग का दूसरा प्रश्न है एक ही कि वर्णाश्रमाचार युतम, वर्णाश्रमाचार युतम। ये जो प्रश्न है युतम, ये युतम का है कि आधार। मैं जानना चाहता हूँ ये वर्णाश्रम धर्म का आधार क्या है, वर्णाश्रम धर्म जो है ये सनातन धर्म के क्या क्या संबंध क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। वैसे जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, सही बात है, इट इज ट्रू, लेकिन हर व्यक्ति पूर्णतया अनासक्त नहीं है, नॉट एवरीबॉडी इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट। जैसे इस भौतिक जगत में हम क्यों हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि ये भौतिक जगत के साथ हमारा आसक्ति है, बिकॉज एम अटैच, दैट इज व्हाई आई एम हियर, और कोई कारण नहीं है। हमारे भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में, भौतिक आसक्ति है इस भौतिक जगत में। तो अगर भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति है तो उसको कैसे, इच्छाओं कैसे मैं पूर्ण करूँ? इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धार्मिक तरीके से एक इच्छाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था बनाई गया है, क्या है वो? उसको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। ब्रह्मचारी ग्रहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण और चार आश्रम का निर्माण किसके लिए हुआ है? ये हमारी भौतिक स्थिति है, यानी हमारी चेतना का गुणों के द्वारा मिश्रण होता है, सत्व रजस तम, ये गुणों के अंतर्गत हमारे अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होता है। इन प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के लिए, इन प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म है। वैसे जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो 100% वही व्यक्ति पालन कर सकता है जो पूर्णतया मुक्त है, कोई बौद्धिक आसक्ति नहीं है। लेकिन जिसका बौद्धिक आसक्ति है वो क्या करे, वो पूर्ण करे कैसे? तो वो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास इस स्तर में तो जी नहीं सकता, तो उनके लिए वर्णाश्रम धर्म। तो ये वर्णाश्रम धर्म भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये 24 घंटा कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना, ये केवल कुछ ही मुक्त जीवों के लिए संभव है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीबडी। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करते करते भगवान की सेवा कर सकता, भगवान की सेवा करते करते क्या होगा, वो उनका जो गुणों का प्रभाव है उनके ऊपर, वो धीरे धीरे से वो शांत हो सकता है, धीरे धीरे से गुणों का प्रभाव जो है वो कम होते जाएगा, और दीप स्तर में दिव्य स्वरूप वह कृष्ण नित्य दास इस स्तर में वो अपने आप को स्थित कर सकता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना जो भौतिक कलमश है या गुणों का प्रभाव है इससे हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? मुक्त जीवों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम आपको कहते हैं नाम में प्रोरंजन वर्णते नाम वैश्य में कोई भी वर्णाश्रम धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, एवर नथिंग डू विद। लेकिन फिर भी हमारे वैष्णव आचार्य ने क्या किया, वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बहुत जोर दिया। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने जो पहला जो महत्वपूर्ण चीज है मैंने इस स्थान में स्थापना कर दिया है। अरे मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, वो जो है वो आप करो, देन यू डू इट। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म का महत्व के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है, और दूसरी जगह प्रभुपाद जी ने कहा वर्णाश्रम धर्म जो है वो गौण है, सेकेंडरी। ये महत्वपूर्ण है लेकिन गौण है। तो हमको बहुत सूक्ष्म विचार करना चाहिए इस विषय के ऊपर कि ये सनातन धर्म जीवेश्वर को है कृष्ण नित्यदास और ये वर्णाश्रम धर्म के बीच में अंतर को भी जानना चाहिए, संबंध को भी जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो आजकल इस काल में बड़ा इसके ऊपर चर्चा हो रहा है कि कुछ लोग जो है वर्णाश्रम धर्म का झंडा उठा के बड़े बड़े फॉर्म कम्युनिटी को निर्माण कर रहे हैं। बोलते सब लोग गाँव में चलो हम बड़े किसान बनेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं कि वो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति, उसको भूल जा रहे हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम धर्म तो तुच्छ है, इसका कोई मतलब ही नहीं, कोई जरूरत नहीं इसका, बस जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदा उसका झंडा उठा के वो घूम रहे। लेकिन दोनों के बीच में समन्वय को देखना चाहिए। समन्वय ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो आसक्त जीवों के लिए, अभी भी जिनका बौद्धिक आसक्ति है उन लोगों के लिए है, ताकि धीरे धीरे से उनका गुणों का प्रभाव कम होता जाए और धीरे धीरे से वो शुद्ध भक्ति यानी जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास इस स्तर में वो पहुंच सकते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म किन के लिए है और किस के लिए है वो जानना आवश्यक है। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा, तो हमारी जो भक्ति है उनमें कन्फ्यूजन आता है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगर मुझे तो जब समय आता है बोलेगा हम तो ब्रह्मचारी है, मैं तो ब्रह्मचारी है तो मेरा ड्यूटी नहीं है, अच्छी वेरी गुड। और वैसा है तो ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है, ये भी बहुत ही पहचान है, इट इज ऑल्सो मेटीरियल डेसिग्नेशन। हमारा वास्तविक पहचान क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो पालन करो या ये पालन करो, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। कब तक रहता है, जब तक इन दोनों के बीच में समन्वय को नहीं जानेंगे तब तक ये कन्फ्यूजन रहता है। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण समझता है, ब्राह्मण का प्रवृत्ति है, वेरी गुड, वैसे ब्राह्मण का प्रवृत्ति के द्वारा भगवान की सेवा करते करते हमको वैष्णव क्या है जीवे स्वरूप और कृष्ण उस तक पहुंचना चाहिए। मानो व्यक्ति किसी अंदर शुद्ध की प्रवृत्ति है तो शुद्ध का सेवा या कार्य करते करते वो धीरे धीरे से उनका क्या होगा, शुद्ध का प्रवृत्ति के द्वारा भगवान की सेवा करते करते उनके ऊपर ये जो गुणों का प्रभाव है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे से वो क्या प्राप्त होगा, वो दिव्य स्तर में प्राप्त होगा। तो इसके विषय भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं, बारहवें अध्याय में वो चार श्लोकों का वर्णन करते हैं जिसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो एक जगह कहते हैं ये जो है ये हाई क्लास है, शुद्ध भक्ति है जिसके अंदर प्रेम भक्ति है, वो मय्य वनादस्ता मई बुद्धि निवेश हमेशा मेरे अंदर मेरे बारे स्मरण करना, पूरा मन को मेरे अंदर लगाना, केवल कृष्ण के लिए जीना, ये जो है गोपियों का स्तर है, महान स्तर है। भगवान कहते हैं ठीक है ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, अभ्यास योग में भी। अभ्यास योग क्या है, अभ्यास योग की वर्णाश्रम धर्म से परे है, ये भी शुद्ध भक्ति है। अभ्यास योग के अंतर्गत जो आता है उसको भी वर्णाश्रम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन अभ्यास के स्तर में है। अभी भी उनका कोई भौतिक चीज के साथ कोई पहचान नहीं, नाम उठो नचन उठते ये लागू होता है, उनका वर्णाश्रम के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटा क्या कर रहा है, अभ्यास योग में लगा हुआ है। अभी अतितम समाधान तुम अभ्यास योग असमर्थ हो सी मत कर्म परमो भवा, और इधर बोला अभ्यास योग असमर्थ हो सी मत कर्म परमो भवा, इधर आता है वर्णाश्रम धर्म। भगवान कहते हैं अगर अभ्यास योग असमर्थ हो सी, अभ्यास योग में अगर पूर्ण तैयार नहीं लगा सकते हो तो क्या करो, वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करो। तो जो व्यक्ति 24 घंटा शुद्ध भक्ति अभ्यास योग में साधन भक्ति के अंतर्गत नहीं रह सकता है, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था किया गया है। वर्णाश्रम धर्म ऐसा एक नेट है, नेट को क्या बोलेंगे, ऐसा जाल है। क्या जाल है, किसके लिए है, इंद्रिय तृप्ति घोर इंद्रिय तृप्ति में गिर ना जाए उसके लिए एक महा महत्वपूर्ण जाल। जो व्यक्ति किसी का इंद्रिय तृप्ति में गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उनका चांस ही नहीं है, उनको जाल की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन वैसे लोग जो अभी भी भौतिक इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति है, भौतिक चीज आसक्ति है, तो उनको ये वर्णाश्रम नहीं। अगर ये वर्णाश्रम को नकारा जाए तो क्या होगा, जिसके अंदर मन में काम इच्छा है वो क्या करेगा, तो व्यक्ति जो है अनेकों स्त्रियों को वो उनका मन को खराब करेगा। अगर किसी के अंदर काम इच्छा नहीं है उनको कोई वर्णाश्रम में कोई जरूरत ही नहीं, अगर किसके है तो उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए और उन व्यक्ति को धीरे धीरे से कैसे वो ऊपर की स्तर में वो जाए, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का व्यवस्था किया गया है। इसलिए एक कुशल प्रचारक हो या आचार्य को ये जानना चाहिए, ये वर्णाश्रम धर्म का महत्व को भी जानना चाहिए और उसका स्थान को भी जानना चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, ये दूसरे श्लोक में जो प्रश्न लिखा है वर्णाश्रम आचार्य युतम युतम, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट। यत् पुमान विन्दते परम, यत् पुमान जिसके द्वारा विन्दते परम जो परम स्थान को प्राप्त किया जा सकता है, क्या है परम स्थान, वो है दिव्य प्रेम भक्ति है। ये दिव्य प्रेम भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये प्राप्त करने के लिए मैंने सुना कि सनातन धर्म भी है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, साधन भक्ति भी है, 24 घंटा साधन भक्ति है, और दूसरा है वर्णाश्रम भी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, इन दोनों का स्थान क्या है, खास करके वर्णाश्रम धर्म किसके लिए है, और ये वर्णाश्रम के अंतर्गत कौन किसका क्या क्या ड्यूटीज है, और किस प्रकार अपने अपने स्थान में स्थित होते हुए भगवान की सेवा में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं, उसका बहुत एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन, बहुत विस्तार से वर्णन नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के इस अध्याय में करने वाले हैं। ये अध्याय को कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेता है तो उनको निश्चित रूप में मालूम पड़ जाता है कि हर व्यक्ति का मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन से आश्रम में स्थित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, कौन हूँ, ये सब मेरी जरूरत है कि ये सब बातों को इस अध्याय में हम चर्चा करते हैं। तो खास करके सार रूप में यही है इस श्लोक में, एक वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का वर्णन, दूसरा वर्णाश्रम धर्म का वर्णन, और इनको पालन करते करते लोग कैसे जो सर्वोच्च सिद्धि परम कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत टेक्निकल प्रश्न है, दिखने के लिए बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत गहरा है इस प्रश्न के पीछे उद्देश्य। तो कोई प्रश्न वगैरह, प्रश्न है किसान के द्वारा जो ये पांच हैं, वो तो दिव्य स्तर है जो है श्रवण कीर्तन स्मरण श्रवण जो पंच महासाधन जो है, यानी हरिनाम ये जो है पंच महासाधन है, शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आता है, वर्णाश्रम के साथ कोई संबंध नहीं। अगर 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति पांच महासाधनों में युक्त है, वो ना गृहस्थ ना ब्रह्मचारी ना आम मित्र ना छोटे दोस्त में 24 घंटा कैसा नहीं, एक घंटा है 24 आवर्स, और 24 आवर्स का व्यक्ति इस ये जो है चेतना का स्तर है। मान लो कि कोई कृष्ण की प्रेम भक्ति में हो सकता है, प्रेम भक्ति में चला सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो वाराणसी धर्म के अंदर नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, ये चेतना का स्तर है। चेतना का स्तर का क्या है, कितना भौतिक चीजों से ना सकते, हाउ मच आई एम डिटैच फ्रॉम मैटर, दैट्स ऑल। डिटैच फ्रॉम मैटर कंप्लीटली शुद्ध भक्ति कब होता है, व्हेन यू डिटैच फ्रॉम मैटर। कोई भौतिक चीज के साथ कोई आ सकती नहीं, कोई मान मान बड़ी ऐसा हुआ ये हुआ, नो कंप्लेंट्स। इसलिए वो ब्रह्मचारी जिसका कोई कंप्लेंट्स नहीं रहता है, ही इज ऑलवेज ऑन द डिवाइन प्लेटफॉर्म। हाँ, अगर वो 24 घंटा क्वेश्चन ही है, 24 आवर्स वर्किंग फॉर कृष्णा 24 आवर्स से दे आर साधन भक्ति से, उनका कोई वर्ण और आश्रम के अंतर्गत नहीं आते, दे डोंट कम अंडर एनी वर्ण और आश्रम। प्रश्न 24 आवर्स की बात है। वर्णाश्रम धर्म जो है वो शुद्ध भक्ति के अंग नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर डिवोशनल सर्विस का सबसे पहला ये है कि क्लेशाग्नि शुभधा ये सब तभी हो सकता है जब 24 घंटा नवधा भक्ति के अंदर या पांचांग भक्ति 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल उसके अंतर्गत मिलता है। कुछ लोगों को जरूरत है, जैसे आप नहाने के लिए जाते हो, कुछ लोगों को साबुन की लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ लोग अवश्य वर्णाश्रम तो साबुन के बराबर है, उसको क्या कुछ लोगों को जरूरत है तो लगाना चाहिए, लगा के क्या करना है वो साबुन को निकालना है। ऐसा नहीं कि साबुन तो साफ करने के लिए भी लगा के बाहर आऊंगा, नहीं, वर्णाश्रम जैसा है साबुन जैसा है, सोप यू हैव टू अप्लाई इट, नॉट एवरीबॉडी रिक्वायर्स, सम रिक्वायर सम डोंट रिक्वायर, कुछ लोगों को जरूरत है कुछ लोगों को जरूरत नहीं। जिसका ज्यादा मैल नहीं, खाली धूल लगा हुआ है, खाली खबर के नीचे आएगा तो सब धूल निकल जाएगा, जैसे थोड़ा तेल लगा हुआ है, तेल का क्या है अटैचमेंट ज्यादा है तो रिक्वायर, और उसको कोई अवहेलना की बात नहीं, उनको जरूरत है जरूरत है, लेकिन वो साबुन लगा के क्या करना, धीरे धीरे से साबुन को भी निकाल देना, लेकिन तो वर्णाश्रम शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। वर्णाश्रम धर्म शुद्ध भक्ति इज बियॉन्ड वर्णाश्रम धर्म, ये जो सनातन धर्म है, जैसे मान लो कि अपने आप को मैं समझता है ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण क्या कहते हैं ब्राह्मण होगा तो सनातन कहां से हुआ, वो सनातन नहीं तो सनातन धर्म नहीं हो। शास्त्रों में वर्णन किया जाए सनातन धर्म का वर्णाश्रम धर्म, एक एक जगह भोपाल जी ने इस बात को कहा, किसके लिए कहा, वेदों के दृष्टिकोण से, वेदों के दृष्टिकोण से कहा गया है, वेदों में सनातन धर्म का वर्णन है, वेदों में अधिकांश आपको सनातन धर्म प्राप्त होता है, इस दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो लेकिन दोनों के बीच में सबको डिफरेंस है, ये भक्ति सनातन सिंह ने इसका अच्छा वर्णन किया गया है। वेरी गुड क्वेश्चन। इनका प्रश्न ये है, वर्णाश्रम धर्म को बाह्य करके उन्होंने नकार दिया है तो संन्यास को उन्होंने कड़ाई से पालन किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने नाम विप्रो नचनवटी नहीं वैश्य नौ शूद्रो नवर्णी नाम वर्णी नचनवटी नारस्तो यदि वाह मैं यदि भी नहीं, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास को धारण किया। वो क्यों धारण किया, उसके पीछे दो कारण, अंतरंगिक कारण बहिरंगिक कारण। तो मैंने कहा कि अंतरंगिक कारण क्या है, अंतरंगिक कारण के बाद बहिरंगिक कारण के बाद इस बार गौर पूर्णिमा में मैंने उसके ऊपर क्लास दिया था, व्हाट इज द इंटरनल रीजन ऑफ चैतन्य एक्सेप्टिंग संन्यास। तो ये जो चर्चा के पहले उस दिन क्लास दिया था, उस दिन मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको वर्णाश्रम से क्या लेना देना है, तमाम कर्माणि लिम्पन्ति हमें कर्म फिर वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम मैंने सीखे। वैसे कृष्ण को वर्णाश्रम को देना देना नहीं, लेकिन क्षत्रिय के रूप में जो कार्य करना सब कुछ कड़ाई से पालन किया है, क्यों, क्योंकि ये लोक संग्रह में आप ही लोक संग्रह लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए भगवत भगवान ने कहा जनक आदि जनक महाराज को कोई जरूरत नहीं है पर आश्रम को पालन करने के लिए फिर भी उन्होंने पालन किया क्यों पालन किया पहले गौड़ी वैष्णव परंपरा में कोई संन्यास नहीं था डायरेक्टली बाबा जी बनते ने सोचा कि बाबा जी बनके ऐसे जंगलों में जाके बैठ कर छपा कर रहे अयोग्य लोग भी बाबा जी बन रहे तो संन्यास तो इंट्रोड्यूस करना होगा इसलिए चेतन जिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गिरि शास्त्रों से संन्यास मंत्रों पर संकलन किया और गौर किशोर दास बाबा जी फोटो के सामने अपने आप संन्यास ग्रहण किया गौर किशोर दास बाबा जी के सामने जो बक्सर ठाकुर संन्यास ग्रहण करने के लिए हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में संन्यास नहीं था देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफिशियल संन्यास और डायरेक्टली परमहंस बाबा जी का वेश धारण करते थे लाल वस्त्र धारण नहीं करते थे वो नॉट एक्सेप्टिंग एनी मुझे देखा नहीं तो वैष्णव सागर ने ये दोनों एक है डायमंड थ्रेड ये जो जेन्यू है और संन्यास ये दोनों को इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि समाज में अगर प्रचार करना है समाज के अनुसार चलना होगा जैसे कांटा जो है कांटा को निकालता है असित में संन्यास और ये ब्राह्मण का पहचान ये कांटा है क्योंकि बहुत डिफरेंट जस्ट बिकॉज आई एम सन्यासी डजंट मीन दिस डिवाइन इज मेटीरियल डेसिग्नेशन मानो कि संन्यास मैं सन्यासी हूँ ये भाव अगर रहे फिर से जन्म लेगा एक बार अगेन वाई क्योंकि संन्यास हूँ सन्यासी हूँ ब्रह्मचारी हूँ मैं गृहस्थ हूँ ये तो बहुत ही पहचान लेकिन समाज में प्रचार करना है समाज में काटा है सबके बहुत ही इच्छा में काटा तो उसको निकालने के लिए और काटा को हमारे हाथ में लेना इसलिए क्षेत्र में आपने संन्यास ग्रहण किया एक संन्यास और संन्यास ने कड़ाई से क्यों पालन किया क्योंकि लोग संग्रह अगर संन्यास देने के बाद कड़ाई से पालन नहीं किया जाता बाकी लोग देखेंगे देखो संन्यास होने के बाद भी पालन नहीं करता है निंदा करेंगे जिस कार्य के लिए संन्यास किया उसका फायदा नहीं इस पदार्थ पर ठीक है पंद्रह भाग
Thank you.